शांति। सभी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी का बहुत बहुत इस सभा में ईस्टर्न जोन की ओर से स्वागत करते हैं। आदरणीय भाई जी का संक्षिप्त परिचय। आप 1962 में ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और आपकी सबसे बड़ी प्राप्ति है, उपलब्धि है, आप बहुत बहुत पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो साकार बाबा की पालना लिए हैं, बाबा मम्मा की दिव्य पालना के अधिकारी हैं। साथ ही आपने लौकिक में 63 में स्नातक की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त कर तत्पश्चात धनबाद माइनिंग स्कूल से आपने 67 में एमटेक की डिग्री भी प्राप्त की। तत्पश्चात आपने ओएनजीसी में सर्विस करते हुए 67 से 28 वर्षों तक कार्यरत रहे और 1996 में आपने अपना सुपरिंटेंडिंग जियो फिजिसिस्ट के पद से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हुए समर्पित रूप से सेवाएं देना प्रारंभ किए। साथ ही आपने 62 से ही कई सेवा केंद्रों को स्थापन करने में बहुत ही विशेष भूमिका अदा किए हैं। बिहार, आसाम, गुजरात आदि में सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने हैं। आप विशेष रूप से RERF के गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं, आप मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग के आप चेयरपर्सन हैं, ज्ञान सरोवर परिसर के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं और SCU न्यूज के आप संपादक भी हैं। आपने भारत व नेपाल में 22 पर्यावरण जागृति और आपदा प्रबंधन अभियानों को पूरा किया है, कई राज्यों में मेगा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए हैं। आपने 85 में भारत के विभिन्न शहरों में 12 पद यात्राओं को भी संपन्न किया है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपने भाग लिया है। आपने लगभग 10,000 से भी अधिक प्रवचनों द्वारा आपके अंदर जो विशेष सभी को बहुत सरलता से ईश्वरीय ज्ञान को समझाने की, लॉजिकली स्पष्ट करने की विधि है, कला है, इसके द्वारा आपने लाखों को जागृत किया है। कई प्रदर्शनियों को भी आपने निर्माण किया, जैसे औद्योगिक क्रांति, बच्चों का उत्थान, युवा विकास, शिक्षा में नई दिशा आदि। आपने 20 शहरों में स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी का भी निर्माण कराया है। आपने विदेश यात्रा कर अनेक आत्माओं का भाग्य बनाया है, जैसे USA, UK, रशिया, नेपाल, अफ्रीकन कंट्रीज के कई देशों में, कैरेबियन कंट्रीज के भी कई देशों में संदेश दिया है। आपने कई पुस्तकों का भी निर्माण किया है, विज्ञान, आध्यात्मिक नैतिकता व पर्यावरण, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, श्रेष्ठ संसार के लिए सार्वभौमिक सहयोग, शिक्षा में नई दिशा आदि। साथ ही आपको देश व विदेश के द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जैसे 92 में HRD मंत्री अर्जुन सिंह द्वारा पर्यावरण श्री की उपाधि दी गई, 2004 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के क्षेत्र में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन फॉर वर्ल्ड पीस USA द्वारा तथा कॉमनियन वेल्थ एसोसिएशन फॉर एजुकेटर्स एंड ट्रेनिंग द्वारा आपने UK द्वारा आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 2013 में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा आपको पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अतुलनीय योगदान करते हुए ग्रीन आइडियल अवार्ड द्वारा भी नवाजा गया है। ऐसे बाबा के बहुत बहुत अनमोल रतन आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी से आज हम सुनेंगे। आपका विषय है बाबा से प्रीत की रीति। आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी।
ओम शांति। बहन जी अभी जब विषय बता रहे थे बाबा से प्रीत की रीत, तो वास्तव में आपको तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सब अगर प्रीत, बाबा से प्रीत न होती, उसकी रीत न जानते होते तो आज यहाँ होते ही नहीं। तो इसलिए प्रीत की रीत तो मैं तो आप सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं ही, जानकार हैं, और बाबा से प्रीत की रीत आप सब निभा ही रहे हैं अभी तक हैं यहाँ पर और आगे भी सदा रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हर चीज का कोई ना कोई लक्ष्य होता ही है। तो वैसे तो हम सभी बाबा की प्रीत में रंगे हुए हैं, प्रीत की रीत निभा भी रहे हैं, लेकिन उसमें भी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में भी सभी नंबरवार हो जाते हैं। और जब नंबरवार हो जाते हैं तो हम सभी चाहते हैं हम और आगे जाएं, नंबर वन हो जाएं। तो नंबर वन जिसने प्रीत की रीत निभाई है और जिसने नंबर वन पद का अधिकार प्राप्त किया है, तो यदि उसके पद चिन्हों पर चलते रहते हैं तो नंबर वन हम भी जा सकते हैं। और इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहता है कि नंबर वन, बाबा ने हम बच्चों को बताया है कौन है नंबर वन, प्रीत की रीत निभाने में नंबर वन कौन है, ब्रह्मा बाबा। और बाबा खुद कहता था कि भले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को नंबर वन दिया है, लेकिन बाबा मम्मा को, मातेश्वरी जी को वन प्लस में रखता है, यानी वन से भी थोड़ा आगे, क्योंकि इतने बड़े संगठन में रहते हुए भी मम्मा ने किस प्रकार से बाबा से प्रीत की रीत निभाई वो हम सब लोग जानते भी हैं। यज्ञ का इतिहास भी हम सब ने सुना है, और इसलिए बाबा मुरली में भी समय प्रति समय चेतावनी देते रहते हैं। आज की मुरली में बाबा ने क्या हम बच्चों को चेतावनी दी और क्या बात बताई कि कौन सी बात यज्ञ की मर्यादा के विरुद्ध है, कौन सी बात बताई बाबा ने? जो पहले अभी की शायद जनरेशन तो ये जानती नहीं होगी ज्यादा कि नॉवेल्स वगैरह क्या है, लेकिन साकार बाबा के समय में 1960s में 70s में उस समय जो बाबा ने देखा बताया और ये अनुभव भी किया, बच्चे भी बाबा को लिखा करते थे, कोई बात पूछनी होती थी साकार में बाबा मामा होते थे तो बाबा को पूछा करते थे, बाबा उसका समाधान भी हम बच्चों को देते थे। तो इसमें बाबा ने जो कहा उसे अपने समय के अनुसार ढाल लेना चाहिए। बाबा ने भले कहा कि नॉवेल्स आदि स्टोरी पढ़ना और ऐसी कहानियां पढ़ना, फिल्मी स्टोरी, वो उससे आत्मा की उन्नति नहीं बल्कि अवनति ही होती है, आत्मा और पतित बनती जाती है। आज के रेफरेंस में तो कहेंगे कि हाँ वाकई हम तो नॉवेल पढ़ते ही नहीं है, लेकिन आज के रेफरेंस में वही बात मोबाइल के लिए भी फिट बैठती है, बल्कि उससे दो कदम आगे ही है, क्योंकि नॉवेल में तो फिर भी पढ़ना होता है और पढ़ने के साथ दिमाग में उसका चित्रीकरण भी होता जाता है या करना होता है। लेकिन आज मोबाइल्स के अंदर तो इतना सब कुछ डिटेल्स में हर प्रकार की शिक्षा का ज्ञान है कि उसमें दिखता भी जाता है, आवाज भी सुनाई पड़ती जाती है, और इस प्रकार से उसका इफेक्ट तो और ज्यादा होता है। इसीलिए खाली यही नहीं सोच लेना कि बाबा ने कहा और हम तो वाकई नॉवेल पढ़ते नहीं है कभी, तो बाबा के हम बहुत जैसे सिकी लदे बच्चे हैं। ठीक है, हैं भी, लेकिन यदि उसमें हमें ये महसूस होता है कि मोबाइल के द्वारा हमारे अंदर काफी ऐसी चीज जा रही है जो कि ज्ञान की मर्यादा के विपरीत है, तो बाबा की उस समय की कही हुई बात आज भी सार्थक हमारे लिए सिद्ध होती है। इसीलिए प्रीत की रीत सच्चे अर्थों में हम निभाते चलें तो उसके लिए हमारे सामने रोल मॉडल तो ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा ने प्रीत की रीत पहले दिन से ही निभाई, अथवा ये कहें कि पहले दिन से भी और पहले। हम सबने सुना है, पढ़ा है जीवन कहानी में बाबा की, कि बाबा नारायण के बहुत भक्त थे और बहुत पूजा करते थे, बिना नारायण की उसके पूजा के बस सुबह कुछ भी चाय नाश्ता कुछ भी नहीं करते थे, और उसके साथ ही साथ बाबा सदा जब तक गीता पाठ नहीं कर लेते थे तब तक आगे की दिनचर्या भी उनकी नहीं चलती थी। तो इसका भाव ये है कि जिससे भी प्रीत होती है, पहली बात तो जैसा वो कहता है या करता है वैसा हमें बनना होता है, करना होता है, उस समान बनना होता है जिससे सही अर्थों में प्रीत है। जैसे ब्रह्मा बाबा की प्रीत नारायण से थी और उस नवदा भक्ति के कारण ही बाबा को जैसे नारायण का जब साक्षात्कार हुआ तो बस बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, नारायण को देखते ही रह गए एकदम। और जब नारायण के मुख से यह आवाज निकली कि अहम चतुर्भुज तत्व, मैं चतुर्भुज हूं तुम भी मेरा ही स्वरूप हो, तो बस बाबा तो समझ नहीं सके इसका क्या मतलब है। लेकिन फिर भी जितना गुरुओं आदि ने भक्ति मार्ग में समझाया तो भाई मैं जो हूं नारायण तुम भी वो ही हो, तुम मेरा ही स्वरूप हो, तुम भी नारायण का ही रूप हो, तो बस बाबा को तो एकदम नशा चढ़ गया। ओहो, मैं नारायण हूं, मैं ये बनने वाला हूं, और बस उस नशे में बाबा एकदम, जैसा बाबा मुरली में कहते भी हैं, आज की मुरली में भी बाबा ने बोला तुम बच्चों को ऐसा नशा रहना चाहिए। तो बाबा ने हमें भी जो लक्ष्य दिया है वो तो सबको क्लियर है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति करना। तो वो जो लक्ष्य दिया है, तो यदि हमारी सच्ची प्रीत है बाबा के साथ तो हमें भी अपने लक्ष्य से ना ऐसा ही बस उस नशे में डूब जाना चाहिए, सदा वो ही स्मृति में रहे, मैं ये बनने वाला हूं। और बाबा को यही प्रैक्टिकल सिर्फ नहीं था नशा, लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने, हम सबने पढ़ा भी है बाबा की जीवन कहानी में, सुना भी है दादियों के मुख से कि बाबा ने उसमें जब समझ में हमारा पहला पाठ आया कि हम सब आत्मा हैं प्रकृति के बीच में निवास करने वाली, और मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट प्ले कर रही हूं, तो बस बाबा को वो ही लगन लग गई। और बाबा हरेक को देखता था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मला, जो भी पत्नी, बच्चे, बच्चियां, पोते आदि, जो कुछ भी, सब के प्रति बाबा को कि सब आत्मा। और इससे क्या हुआ कि बाबा को जब ये अभ्यास हो गया घर में, पहले कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले बाबा ने घर में अभ्यास किया सब संबंधियों, पत्नी, बच्चे आदि के साथ, और फिर बाबा के पास जब भी पार्टीज आती थी, हम लोग आते थे तो बस बाबा आओ आओ मीठे बच्चे, ऐसे हाथ फैला देता था, और बिल्कुल हम लोग जैसे चुंबकीय आकर्षण में एकदम खिंचे चले आते थे और बाबा की बाहों में समा जाते थे। तो और बाबा बस दृष्टि देता था, पहले दृष्टि देते देते हम लेते बाबा की बाह में समाते थे और फिर विदेही एकदम हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, न्यारे हो जाते थे। हालांकि तब तक कोई ज्ञान नहीं होता था कि विदेही क्या होता है, अशरीरी क्या होता है, कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन न्यारेपन की अवस्था की ऐसी अनुभूति होती थी, अतीन्द्रिय सुख की ऐसी अनुभूति होती थी। इंद्रिय सुख की अनुभूतियों का तो हम सब ने अनुभव किया है, भाई मुक्का हो, रसगुल्ला खाते हैं, मीठा होता है आदि आदि, ऐसे ही जैसे ही बाबा के भाव में गए इंद्रियों से न्यारे हो जाते थे। तो पहली बात तो ये हमें भी देखनी है अपने अंदर भी कि प्रीत की अगर मेरी सच्ची रीत है बाबा से, जो जैसा विषय कहता है, तो मैं भी अगर किसी भी आत्मा को दृष्टि देती हूँ, चाहे नैनों के द्वारा, चाहे प्रकृति में देखें, और वो आत्मा क्या विदेही हो जाती है, अशरीरी हो जाती है, उसे ये अनुभूति होती है? और अगर ये अनुभूति होती है उसे, तो मेरी प्रीत की रीत सच्ची है। लेकिन हम सबका अनुभव ये है कि सारे दिन भर में कितनी बार हमें याद रहता है कि मैं आत्मा हूं। भले रोज सुबह सुबह मुरली सुनते हैं, अभ्यास भी करते हैं अमृत वेले से, लेकिन फिर भी हम सबका अनुभव ये है कि सारे दिन भर में भूल जाते हैं, ये स्मृति नहीं रहती है। तो पहली बात तो ये कि प्रीत की रीत हमने संपूर्ण रीति से निभाई नहीं है, निभा नहीं पा रहे हैं अभी तक भी। और इस कारण से ही अगर ये प्रीत की रीत बाबा से निभाएंगे, तो जैसे ही किसी भी आत्मा की तरफ दृष्टि जाएगी, बाबा ने भी एक मुरली में कहा था ना, जब बाबा दृष्टि देते हैं तो ये आपको खबर पड़ता है कि बाबा नैनों में देख रहे हैं या प्रकृति के बीच में देख रहे हैं, बिल्कुल ये तो पास ही है तो पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही कि जिस भी आत्मा को हम दृष्टि दें, वास्तव में हमारी दृष्टि नैनों के साथ जैसे प्रकृति में भी हो, उस आत्मा को भी देखें, तो अवश्य ही वो आत्मा भी देह से न्यारेपन का अनुभव करेगी और ये प्रीत की रीत सच्चा निभाना हुआ पहली बात। दूसरी बात, ये प्रीत की रीत भी तब निभा सकते हैं जब पहला पाठ ही एकदम पक्का करा होगा मैं आत्मा हूं और साथ ही साथ सोल कहते हैं ना, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, आत्मा अनेक गुण स्वरूप है, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान गुण शक्ति आदि आदि, लेकिन उसमें भी जो दूसरे सहज महसूस कर सकें, जो हम भी अनुभव कर सकें, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। तो प्रेम का रूप क्या है? प्रेम का रूप जो है बड़ों के प्रति, एल्डर्स के प्रति प्रेम का स्वरूप है रिगार्ड, रिस्पेक्ट। जो भी बड़े हों उनके प्रति हमारा रिगार्ड हो, रिस्पेक्ट हो। जो छोटे हैं उनके प्रति कौन सा रूप हो? वो रूप हो क्षमा का रूप हो। छोटे क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को, छोटे तो अनुभव नहीं है कोई, उन्हें दंगा करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो बड़ों को प्रिय न भी लगती हो, लेकिन उसके साथ साथ छोटों के प्रति सदा क्षमा का रूप हो, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट रिवगार्ड हो और समान वालों के प्रति अति स्नेह आदर और समानता का ऐसा व्यवहार हो। समानता माने मैं भी अपने को आत्मा समझूं, उसे भी आत्मा समझें और इस प्रकार से हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार हो। यह है दूसरा प्रेम का स्वरूप और ये बाबा में एकदम पल पल में दिखता था। बाबा से जो भी मिलता था ना, उसे यही ब्रह्मा बाबा से जो मिलता था उसे ये महसूस होता था, बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। बच्चे को बच्चे जैसा समान, बूढ़े के साथ बूढ़े जैसी बात और समान वालों के साथ समानता का व्यवहार। तो जैसे ही बाबा को हम सब मिलते थे, बाबा की बाह में जाते थे, विदेही हो जाते थे, थोड़ी देर तक वो अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेते थे, फिर बाबा हाँ बच्चे आओ आओ लौटो, क्योंकि हम देह से न्यारे हो जाते थे। हालांकि उस स्थिति का बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा अनुभूति उस समय बहुत देर तक तो नहीं होती थी, क्योंकि ये बाबा की शक्ति थी, बाबा की पवित्रता का आकर्षण था कि वो हमें अनुभव कराता था। हमारे में तो कोई शक्ति नहीं, दुनिया से आए हुए होते थे, पहली बार भी मिल रहे होते थे, भले बाबा की पर्सनैलिटी ऐसी थी फिर भी कोई बहुत आध्यात्मिकता का कोई ज्ञान तो होता नहीं था, फिर भी ऐसे अनुभूति होती थी, बस वाह बाबा कितना प्यार कर, कितना बाबा के रोम रोम से ना एकदम वो प्यार की किरणें जैसे बरसती थी। तो प्रीत की रीत का एक ये भी है कि हम जिस आत्मा, चाहे लौकिक या अलौकिक, जिसके भी संपर्क में रहें, उसे हम यदि देह भान का अनुभव होता है तो देह भान माने विकारों का अनुभव। मैं पुरुष हूं, कोई स्त्री मिल रही है तो पुरुष और स्त्री का भान होगा तो देह के प्रति बुद्धि चली जाएगी, लेकिन बाबा से मिलते हुए सारे भाई बहने कुमारियां माताएं सब मिलते थे, लेकिन किसी को भी ये देह का जरा क्षण भंगुर भी भान नहीं आता था कि मैं ये शरीर हूं। तो उससे क्या होता था, कि वो अनुभूति, तो ये प्रीत की सच्ची रीत है। हम तो जानते नहीं थे, लेकिन बाबा जानता था कि ये प्रीत की रीत है। तो बाबा उस दृष्टिकोण से देखता था और हम उस लहर में बह जाते थे। तो एक ये बात अनुभव की है कि हम जिनसे भी मिले प्रीत का ये ही अनुभव। तीसरी बात और हाँ, बाबा जो है ना सबको एकदम ऐसी समानता से देखता था, हर एक को यही अनुभव होता था। जैसा मैंने बताया कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, हर एक को ये अनुभूति। तो हमारे से भी हर आत्मा को ये अनुभव, हर व्यक्ति को ये अनुभव हो, नोन हो या अननोन हो। बाबा के पास तो कई आते थे पहली बार, भले बाबा के पूछने पर क्लब पहले वाले बच्चे हैं, और बाबा जब मिलता था तो यही भान होता था। लेकिन हमारा ये अनुभव हमारे द्वारा सभी को होना चाहिए, जिनसे भी लौकिक अलौकिक संबंधी कोई बाहर के हों, अपने हों, सबको ऐसेपन की अनुभूति हो। इसीलिए किसी को भी कोई, बाबा ने अभी, बाबा भी धीरे धीरे हम बच्चों को स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेता चला जा रहा है। हमें याद आता है जब पहले 62-63 में हम बाबा से मिलते थे तो बाबा का ज्ञान मोस्टली होता था बच्चे कोई भी कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है, क्यों, इससे विकर्म बनते हैं और फिर सजाएं खानी पड़ेगी। फिर बाबा और एक दो साल निकले, 64-65 में कहने बाबा का ज्ञान होता था बच्चे, यदि मुंह से भी कोई ऐसा अपशब्द निकला जिससे किसी को कोई दुख हुआ, कष्ट हुआ, तो दुख दिया शब्दों से तो दुखी होकर मरेंगे, ये भी बाबा का भाव होता था। और फिर बाबा लास्ट में 68-69 वगैरह में तो इतनी सूक्ष्मता में ले जाता था बच्चे, संकल्प के द्वारा भी किसी को दुख नहीं देना है। संकल्प में भी सोचा ना किसी के लिए, तो वो संकल्प तक ही नहीं हुआ। हम समझते हैं ये तो मेरे मन की बात है, दूसरे को कैसे पता चलेगा, लेकिन नहीं, संकल्प में होता है तो वो हमारे वाइब्रेशन से बाहर निकलता है, एक एक अंग से। वैसी अगर किसी के प्रति प्रेम की भावना है, शुभ भावना है, शुभ कामना है, तो वैसी ही वाइब्रेशंस निकलेंगी और दूसरे को भी वो ही खुशी, आनंद, शक्ति, प्रेम का अनुभव होगा। और यदि किसी को दिखाने के भाव से हम भले मुस्कुरा दे, लेकिन अंदर उसके प्रति कोई श्रद्धा ना हो, प्रेम की बात ना हो, तो असली में उसे वाइब्रेशन वो ही पहुंचे, क्योंकि वाइब्रेशंस की स्पीड बहुत फास्ट और बहुत पेनिट्रेटिव होती है, वो मन के अंदर तक चली जाती है। इसीलिए मनसा में भी हमें किसी को दुख नहीं देना है। और फिर बाबा मनसा से भी, मनसा में तो फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है, लेकिन बाबा मनसा से भी और सूक्ष्म में ले गए कि बच्चे स्वप्न में भी किसी के प्रति कोई भी कष्ट देने की, दुख देने की कोई गलत भावना किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वप्न में भी हुए तो भी वाइब्रेशन वायुमंडल बनाती है, और वाइब्रेशन जब वायुमंडल बनाएंगी तो वो वायुमंडल, तो उस वायुमंडल में तो जो भी आता है वो वैसा महसूस करता है। आज अज्ञानी आत्माएं भी मधुबन के और यहाँ संपर्क में आती हैं, बहुत बहुत प्रसन्न होके जाती है, ये तो धरती पर स्वर्ग यहीं पर है। एक बाहर की बात होती है भाई, सफाई है, शांति है, कोई उसमें भोजन की शुद्धता है आदि आदि, लेकिन वास्तविक असर डालता है जो हमारी आंतरिक पवित्रता है, जो ब्रह्मचर्य है पवित्रता। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है? ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी यानी ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते करते चलना है। ये है जो बाबा बताते हैं हम बच्चों को साथ में, कि जो आज का जैसा विषय है उसके ऊपर और क्या चाहिए। ये भी बाबा तो हमें एकदम अंत समय के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि हमारा गायन है अंतमति सोगति का। अंत में जब हमारे प्राण तन से निकलेंगे, आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी, उस समय जो स्थिति होगी उस स्थिति के अनुसार ही हमारा पुनर्जन्म होता है, उस स्थिति के अनुसार ही हमारे आगे की सारी जीवन चलता है। और इसलिए ये आवश्यक है, जैसे लौकिक दुनिया में ना क्या होता है, जो सैलरी मिलती है लौकिक दुनिया में, गवर्नमेंट में भी या कहीं भी, लास्ट पे सर्टिफिकेट जो होता है, आखिरी दिन जो सैलरी होती है उसके अनुसार ही उसकी पेंशन और जो पूरा का पूरा प्रोविडेंट फंड, सारा चीज, हर चीज कैलकुलेट होती है। लास्ट डे की सैलरी, लास्ट पे सर्टिफिकेट बोलते हैं LPC। ऐसे ही लास्ट मोमेंट पर जब आत्मा ने यह शरीर छोड़ा और उस समय हमारी आंतरिक स्थिति कैसी है। और इसीलिए अभी बाबा चूंकि बहुत एडवांस कोर्स करा रहे हैं, पहले हमारा कोर्स होता था, कोर्स किया, फिर रिवाइज कोर्स किया, वो रिवाइज कोर्स यानी अव्यक्त मुरलियां भी, फिर उसके बाद और क्या किया, जो कोर्स है एक्सपीरियंस अनुभव करने का वो किया, और अब बाबा हमें और क्या करा रहा है, लिबरेशन कोर्स। हम लिबरेट कैसे अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी से भी हम मुक्ति कैसे पालें, जो चीज है। और इसीलिए अंत समय की बात जो है ना, अभी बाबा क्या कहता है, गौर किया है आपने? बाबा कहता है सबसे आपका प्यार हो, नहीं तो यूजुअली क्या होता है, अक्सर करके हम मनुष्यों में एक भावना होती है, दो बात खास होती हैं। एक, हम किसी को कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जो अपना समझते हैं, ये अपेक्षा, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन, किसी से जो एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षाएं होती हैं, वो करते हैं। और दूसरा, अगर किसी के प्रति हमारी उतनी स्नेह भावना नहीं होती है तो अपेक्षा की बजाय उपेक्षा हो जाती है, उसकी तरफ देखते हुए भी ना हम इधर नजर करके चल देंगे, ध्यान नहीं देंगे, उपेक्षा हो जाएगी। तो बाबा अब चाहता है हम बच्चों से न किसी के प्रति अपेक्षा, न किसी के प्रति उपेक्षा, सबके प्रति समान भाव, इतना प्रेम भाव हो बिल्कुल न तो, क्योंकि अंत समय क्या होता है, भक्ति मार्ग में भी हम सुनते आए हैं कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो क्या होता है, आत्मा जब निकलती है तो या तो उसे वो याद आता है जिसके प्रति बहुत प्रेम होता है, बहुत स्नेह होता है, जिसमें मोह होता है, बार बार वही व्यक्ति याद आता रहता है, या फिर वो याद आता है जिससे दुश्मनी होती है। और ऐसे बहुत उदाहरण सुनते चले आए हैं कि व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो अपने बच्चों को बुलाकर भी कहता है, भाई फलाने फलाने परिवार से ये हमारी दुश्मनी है, उसने हमारे साथ ये किया, हम बदला नहीं ले सके, अब तुम्हें उससे बदला लेना है, आदि आदि कहानियां बहुत परिवारों में मिलती हैं। तो किसी के प्रति भी न अति प्रेम भाव, न कोई अति दुश्मनी का भाव। भक्ति मार्ग में भी इन्हीं बातों को बोल के गए हैं। हाँ, कबीर दास जी का भी प्रसिद्ध है दोया दुआ की, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा ऐसा भाव हो सबके प्रति, जितने भी भाई बहन हैं, ना किसी के प्रति अति स्नेह का भाव, ना किसी के प्रति वैर भाव। क्यों? क्योंकि जिससे अति स्नेह होगा, हमें कोई भी बात पता चलेगी उसको बताए बिगर रहेंगे नहीं, बस कैसे उससे मिलें, उसको बताएं, उससे डिस्कस करें और ये बात उस तक पहुंचाएं। और जिससे दुश्मनी होगी, वैर भाव होगा, उससे तो फीलिंग ही निगेटिव होंगी, बदला लेने की भावनाएं होंगी। तो इसीलिए एक जिनसे प्रीत की रीत ये ही है कि न किसी से अति प्रीत, न किसी से अति दुश्मन। ये असली प्रीत है, जैसे भगवान की है ना, बाबा से भी। भगवान तो चलो शिव बाबा निराकार, वो तो आत्माओं को देखता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा में भी ये गुण कूट कूट के भरा था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा का सानिध्य मिलता था हमेशा, रोज प्रतिदिन, कितने कितने मिनटों तक, कितने घंटों तक। और इसी कारण से ब्रह्मा बाबा भी धीरे 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 शिव बाबा समान होता चला जा रहा था। और इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहा है किसी ने कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। खुदा का नूर जो है शिव बाबा का, वो आदम में, ब्रह्मा बाबा में भी बिल्कुल वैसा ही दृष्टिगोचर धीरे धीरे होता था, और वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे ऑरा से। उसका मैं ऑरा का बताऊं आपको कि मुझे कुछ वर्ष पहले रशिया जाने का मौका मिला। तो वैसे तो दुनिया के अनेक देशों में गए हैं, लेकिन रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, वहाँ की एक खासियत है। वहाँ का एक साइंटिस्ट होके गया था, उसका नाम था किरलियन। वो किरलियन ने ऐसा कैमरे का इजाद किया था, बनाया था, कि जब वो किसी की फोटो निकालता था, तो वैसे तो कैमरा कोई भी हो, फोटो निकालते हैं तो व्यक्ति का रूप रंग सब आ जाता है, लेकिन उस कैमरे में ये खूबी थी कि जब व्यक्ति का फोटो निकालता था, और केवल व्यक्ति का फोटो ही नहीं, किसी भी अंग का वो निकालता था, आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, उंगली, अंगूठा, कुछ भी, तो उसके साथ साथ उसका ऑरा भी आ जाता था। ऑरा माने आभा मंडल, जैसे देवी देवताओं का देखते हैं ना, देवी देवताओं के पीछे एकदम लाइट का थोड़ा ताज दिखाते हैं। और केवल हिंदू ही नहीं, कोई भी महान आत्मा होती हैं, उनके पीछे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, कोई मदर टेरेसा हो, कोई जैन हो, कोई भी महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, उनके पीछे लाइट का क्राउन दिखाते हैं। तो तो उनके पास ऐसा कैमरा है। तो अभी किरलियन साइंटिस्ट तो नहीं रहा, लेकिन उसकी इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी चलती है सेंट पीटर्सबर्ग में, सिटी में, रशिया में है। तो वहां पर बहन जी ने उसको खास बुलाया अपने आश्रम में, और बहन जी ने बताया कि जब भी कोई भी बीके भाई बहन आते हैं तो भी हम लोग बुलाते हैं इन्हें, और ये आके उनका ऑरा निकालते हैं, फोटो निकालते हैं, जिससे उनका ऑरा भी आ जाता है। तो उससे, क्योंकि साइंटिफिक क्षेत्र हमारा रहा है और इस क्षेत्र में खास ये आध्यात्मिकता से भी कनेक्टेड है ये साइंस कैमरे वाली, तो इसीलिए उसके साथ काफी विचार विमर्श एक दो दिन तक हुआ, कई घंटों तक हुआ, और उसने फोटो भी हमारा भी निकाला। और उसने बताया कि मेरे पास दुनिया के सब तरफ के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धि जैनी, सब धर्म वाले भी और सब देशों वाले भी मेरे पास आते हैं, उनका मैं फोटो निकालता हूँ, ऑरा उनका आता है बहुत, दुनिया के सब बड़े से बड़े छोटे से छोटे व्यक्ति का ऑरा मैंने निकाला है। लेकिन मुझे ये बताते बड़ी खुशी होती है कि ब्रह्मा कुमारी वालों का ये लाइट का ऑरा जितना साफ और स्पष्ट होता है उतना किसी का नहीं होता। देखो ये कमाल है बाबा की, क्योंकि ऑरा क्या चीज होती है, ऑरा की लाइट वो होती है जैसा व्यक्ति का मन की अवस्था होती है, मन में पवित्रता होती है, मन में जैसा चिंतन, शुद्ध चिंतन होगा, पवित्र चिंतन होगा, महान, तो लाइट का ऑरा गोल्डन और येलो और व्हाइट की तरह है, उसका ऑरा होगा बहुत चमकीला होगा। और जिसके अंदर विकारों की ज्यादा मात्रा होगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना आदि आदि, तो उसका ऑरा बड़ा डार्क कलर का और ऐसा हेजी जैसा होगा। तो बाबा ने देखो हम बच्चों को ये बताया भी है कि जब विज्ञान आपकी बातों को सिद्ध करेगा, क्योंकि विज्ञान की बात को लोग एकदम मानते हैं, विज्ञान ने कहा, फोटो भी दिखाया कि आदमी अभी चांद तक पहुंच गया, चांद पर उतरा, उसने ये करा वो करा, सब व्यक्ति आंखों से देख लेता है, विज्ञान की बात में डाउट नहीं करेगा वो, ये नहीं कहेगा मैं तो नहीं मानता आदमी उतरा, मैं तो नहीं मानता उसने ये किया, आंखों से देखा सब कुछ अनुभव किया इसलिए सहज मान लेता है। ऐसे ही विज्ञान जब हमारी आध्यात्मिकता की सभी बातों को स्वीकार कर लेगा, जो कि अब विज्ञान बहुत हद तक करता जा रहा है, विज्ञान ने पुनर्जन्म की बातों को मान लिया है, कुछ वर्षों पहले तक वो नहीं मानता था, विज्ञान ने पुनर्जन्म के साथ साथ हिप्नोटिज्म की बात को भी धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया है, उनकी एक किताब भी बहुत है प्रसिद्ध, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। जब हम अमेरिका गए थे तो हमें एक किसी बड़े वैज्ञानिक ने वो किताब दी थी, जब उससे ज्ञान का एक्सचेंज हो रहा था, और तब तो उसमें यही बताया गया था कि आत्मा कैसे पिछले जन्म के संस्कार लेके आती है और वो संस्कारों का प्रभाव इस जन्म में कैसे इतने हद तक होता है वो बात बताई। तो हमारी भी प्रीत की रीत बाबा के साथ जो है ना, वो हमारे पिछले अनेक जन्म के संस्कारों पर निर्भर है। जैसा भक्ति मार्ग बाबा ने कहा ना, जो भक्त भी बहुत हाई क्वालिटी का होगा वो ज्ञान भी बहुत हाई क्वालिटी से उठाएगा, बाबा ने कहा है। और इसी प्रकार से दादियों वगैरह को भी बाबा ने बताया, मेरे पुराने से पुराने भक्त हैं, सबसे पुराना भक्त ब्रह्मा बाबा। तो विक्रमादित्य के रूप में मंदिर भी बनाया, भक्ति मार्ग भी शुरू किया, और इस प्रकार से उस रूप में पुराने से पुराना भक्त हो, यहाँ पर भी नंबर वन आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा, और इस प्रकार से सब बच्चों को भी वैसा ही महसूस कराया उसने बाबा ने। तो इस कारण से ये अनुभव होना चाहिए हर एक को ये, कि बस बाबा जो है जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं। प्रीत की रीत जो है, तो वो जो है ये केवल अनुभव हमें ही ना हो, दूसरों को भी हो कि ये आत्माएं कोई साधारण आत्माएं नहीं है। जिन आत्माओं से, हमारे धारणाओं से तो उन्हें धीरे धीरे पता चलता ही है, लेकिन धारणाओं के अलावा हमारे वाइब्रेशन, हमारे ऑरा, आभा मंडल, और साथ साथ हमारे जो हम बोल निकालते हैं, जो भी वाइब्रेशंस होते हैं, उन वाइब्रेशंस में भी वो वैसा अनुभव करे। तो अभी इस चीज की आवश्यकता विशेष है कि हम, और उसके लिए हमें कौन सा गुण बाबा ने अभी बताया है, अभी आप बच्चों को एक तो ये होना चाहिए मुख्य बात अभी वर्तमान समय कि आपकी निर्णय शक्ति और परख शक्ति बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि माया भी ना अभी पुराने रूप में नहीं आएगी, क्रोध रूप में आई तो पहचान जाएंगे हम क्रोध आया नहीं, माया भी ऐसे रूप में नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसे स्नेह के, ऐसे प्रेम के रूप में आएगी, हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो माया का रूप है। तो बहुत कहानियां हमने सुनी है, सीता जी की भी कहानी सुनी है, सीता जी नहीं मृग को पहचान सके, सीता जी रावण के रूप को नहीं पहचान सके, रिक्शा देने गए बाहर, लाइन के बाहर चले गए, आदि आदि, वो सब कहानियां हमारी ही तो बनी हुई हैं कि हम यथार्थ रूप में अगर नहीं पहचान पाते हैं माया को तो हम रावण के वश में हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता यही है कि हम माया रावण के उस रूप को पहचान करके और फिर हम वो करें। तो इसीलिए अभी बाबा कहता है कौन सी शक्ति, ये तो परख शक्ति निर्णय शक्ति होगी तो माया के रूप को पहचानेंगे, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी शक्ति की आवश्यकता है एकाग्रता की। अभी तक भी हम सब में से अधिकतर का यही अनुभव होगा कि हम बैठते हैं, आते हैं, योग लगाने बैठते हैं, लाल लाइट भी हो गई, गीत भी बज रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े समय तक जैसे हमारा मन एकदम बाबा के उसमें लग जाए, नहीं सारे दिन भर जिन चीजों में रहा वो कुछ घटनाएं भी याद आती रहती हैं, हम कोशिश करते हैं बार बार बाबा से एकाग्रता हो, वो एकाग्रता नहीं हो पाती, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड पूरा नहीं हो पाता। तो इसीलिए अभी आवश्यकता एक तो इस बात की है कि हम उस रीति से बने, और दूसरा बाबा ने बताया एक आवश्यकता भी है वर्तमान समय हम बच्चों को, वो है रहन दिल बनने की। बस किसी को हम देखें, पुराने बीके को मानो देख रहे हैं, उसमें कोई कमियां हैं क्योंकि राजाई की स्थापना हो रही है, कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई प्रजा की भी प्रजा बनेगा, इसीलिए धारणा भी उनकी यहां पर उसी अनुसार होगी। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि उनको देख करके हमारे मन में घृणा की बात नहीं आनी चाहिए, अरे ये इतना 20-25 साल पुराना भाई या बहन, मैं तो अभी 10 साल का ही हूँ, मेरे में अगर ये कमी हुई तो फिर क्या हुआ, नहीं। पूरी राजाई की स्थापना हो रही है, इसीलिए हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, हम हर व्यक्ति को ना उसके आदि और अनादि स्वरूप में देखें, न कि वर्तमान स्वरूप में। बाबा में यही तो खूबी थी, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा हम बच्चों को एकदम वही दैवी स्वरूप में देखता था, ये मेरे कल्प पहले वाले सतयुगी वही बच्चे हैं, पवित्र आत्माएं हैं, और वो पवित्र बच्चे आए हैं मुझसे मिलने, तो इसीलिए वो स्वरूप में देख, बाबा कभी वर्तमान स्वरूप में नहीं देखता था। बस मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि पहली बार जब मैं मिला बाबा से, तो वास्तव में मेरा लौकिक नाम श्री है, श्री होता है ना, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री गोपाल, श्री आगे और नाम होता है, तो सिंगल सरनेम श्री नाम था। तो बाबा से जब पहली बार मिले, तो आओ बच्चे, पहला सेंटेंस तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो बहुत समय से इंतजार कर रहा था, हम तो सोचा हद की बात है, क्योंकि बस से हम गए थे वहाँ लखनऊ से कानपुर, हम तब लखनऊ में ग्रेजुएशन कर रहे थे और कानपुर में बाबा आए हुए थे, तो लखनऊ से सब कानपुर गए थे, लेकिन ठंडी के दिन था, कोहरा था, सड़क भी थोड़ी टूटी फूटी थी, तो पहुंचने में देर हो गई, जो पहुंचना था 7:30 बजे पहुंचे, 8:30-9 के बाद पहुंचे। तो बाबा को कहा, बाबा ऐसा कोहरा था, ऐसे सड़क टूटी हुई थी, अच्छा ऐसा, लेकिन बाबा तो तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो बाबा कितने गुह्य रहस्य से सबको बोलता था, वो भाव यही था, बहुत समय से इंतजार माने बाबा का ये कि कल्प पहले के आप बिछड़े बच्चे हो मेरे, और कल्प कल्प बाबा इंतजार करता है, तो इस कारण से कल्प से बाबा इंतजार कर रहा है, वो बाबा ने कहा। फिर उसके बाद बाबा की गोदी में गए, बाबा से मिले, बाबा का तो स्पर्श ही ऐसा होता था। अब बाबा ने उसमें कहा कि बच्चे आओ, हाँ क्या नाम है, लौकिक में बाबा पूछता था सबसे, तो हमने नाम बताया श्री। क्या बच्चे, क्या बोला कि श्री, अरे श्री, ओ बच्चे अभी तो श्री ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम में नहीं लगा सकता, तो तुमने कैसे लगा लिया श्री, और श्री माने तो वो श्रेष्ठ, वो होता है देवी देवताओं को श्री लगाते हैं, तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, क्योंकि उनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, 5 पवित्र तत्वों का बना हुआ शरीर होता है, इसीलिए वो श्री लगा सकते हैं। तो अभी तो किसी का ब्रह्मा बाबा भी, इसका भी बाबा ने बताया, न आत्मा पवित्र है न शरीर पवित्र है, शरीर तो विकारों की उत्पत्ति है और आत्मा तो सतयुग से पार्ट बजाते बजाते अभी पतित बन गई है, तो इसीलिए अभी ब्रह्मा बाबा भी नहीं लगा सकता, इसीलिए बाबा तुम्हारा नाम बदली करता है, अब तुम्हें श्री जैसा बनना है, अब बाबा तुम्हें नाम मोहन देता है। तो बाबा ने नाम बदल दिया, हा? मोहन जैसा, हाँ यहाँ पर यही समझो कि मैं ये मोहन श्री कृष्ण जैसा बन रहा हूँ, और श्री, श्री माने श्रेष्ठ, और श्री तो देवी देवताएं लगा सकते हैं, तो मैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री कृष्ण, श्री राधे जैसा बन रहा हूँ। तो बाबा हरेक के नाम बदल देता था। आप कहेंगे हमारा तो नाम नहीं बदला, नहीं, सबके नाम, आपका भी नाम बदला है, क्या बदला है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी जो नाम दिया है ना, ब्रह्मा के बच्चे हो, राजा का बच्चा राजकुमार, राजकुमारी, ऐसे ही ये ही नशा रहे, ओहो मैं ब्रह्मा का बच्चा, ब्रह्मा कुमार हूँ, बस वो ही नशा अगर रहे, तो इसके बाद में वो बाबा ने बताया कि मैं फिर किस प्रकार से राजकुमार, राजकुमारी बनूं। तो वो नशा तो बाबा को जैसे पहली बारी नशा चढ़ गया, एक ऐसा ही मैं मुझे और बाबा ने जब और साक्षात्कार किए तो बाबा ने ये भी साक्षात्कार जब किया कि भाई तुम्हें बाबा को साक्षात्कार हुआ नारायण का और साथ ही साथ नई दुनिया का, सतयुगी दुनिया का, स्वर्ग का, और स्वर्ग का साक्षात्कार के साथ साथ बस बाबा तो उस दुनिया को देख गया। उससे पहले बाबा ने विनाश का साक्षात्कार किया था तो बाबा थोड़ा खांपने लगा था, लेकिन विनाश के बाद जब बाबा ने नई दुनिया का साक्षात्कार किया तो बस एकदम बहुत प्रसन्न हो गया। और उसके बाद बाबा के कान में आवाज पड़ी, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ही ऐसी दुनिया बनानी है। अब बाबा तो ध्यान से उतरा, कौन था, किसकी आवाज थी, मैं दुनिया कैसे बनाऊंगा, मुझे तो मालूम नहीं। लेकिन धीरे धीरे सब स्पष्ट होता चला गया। तो अभी हमें भी कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि अरे बाबा ने कल तक तो ये बोला, आज बाबा ये ज्ञान की दूसरी बात बोल रहा है। पहले बाबा ने कहा शिव अंगुष्ठाकार है शिवलिंग और ये, और फिर धीरे धीरे बिंदी तक ले आया। क्यों? बाबा कहता है पहले बच्चों की मोटी बुद्धि थी तो मोटी बात समझते थे। छोटा बच्चा होता है ABCD पहले पढ़ाते हैं 1 2 3 4, फिर वो आगे और पढ़ता चला जाता है और PhD डॉक्टरेट वगैरह भी हो जाता है। तो असली बात यही है कि हम अगर ये रीत को निभाना जानते हैं, चाहते हैं निभाना, तो हमें बाबा की तरह ब्रह्मा बाबा के फुट स्टेप पर एक एक उस पर चलते जाना चाहिए। और हमें ये सौभाग्य मिला है कि ये बाबा को हमने देखा। और क्या देखा, मुझे एक सौभाग्य और मिला इसके साथ कि बाबा जिस दिन अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969, तो यद्यपि इंजीनियरिंग करने के बाद बाबा के कहने पर ही आसाम मेरा पोस्टिंग हुआ ONGC में वहाँ, और वहाँ पर थे। लेकिन अंतिम समय जैसे बाबा ने कहा था, बाबा बच्चे बाबा अंत समय तुम्हें बुला लेगा बस, और बाबा ने अंत समय इशारा दिया, हम भी वहाँ से फ्लाइट पकड़ के आ गए और 17 जनवरी को पहुँच गए। और 17 और 18 जनवरी को इन आँखों से ही बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने को मिली। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। और उसकी एक दो बात शेयर करके मैं समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि समय हो गया है। तो उसमें अंतिम समय, अंतिम दो दिन जैसे ही बाबा के पास पहले जाते थे, कभी बाबा पूछता था बच्चे क्या पूछने आए हो, क्या बताने आए हो, और उस दिन भी हमने सोचा, बाबा से दृष्टि ली कि बाबा को ये बताएंगे, लेकिन बाबा ने बस नैन मुलाकात करी और बाबा ने कहा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मतलब एक मिनट में ही बाबा ने मन का हाल जान लिया नैनों के द्वारा, और मन का हाल जान के बाबा ने उसका जो मन में प्रश्न थे वो समाधान भी कर दिया। तो ये एक कर्मातीत अवस्था की आत्मा का लक्षण है, जिसने प्रीत की रीत पूरी निभाई होगी, ब्रह्मा बाबा ने निभाई, तो अंतिम समय में उसने ये अनुभव कराया हर बच्चे को जो भी बाबा के सम्मुख थे कि नैनों से उसके मन का हाल जान लिया। नंबर दो, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर काम बचा हुआ रह जाता है तो अंत समय कहते हैं वही याद आता है, जब आत्मा शरीर से निकलती, अरे मैंने ये नहीं करा, ये करना बाकी था, अब तो मैं जा रहा हूँ, बस वही अफसोस रहता है। तो बाबा ने अंतिम समय 18 जनवरी को कुछ पत्रों के उत्तर बाकी थे। तब तो पत्र लिखा करते थे, ईमेल और नेट वगैरह कुछ था नहीं, तो पत्र लिखते थे और बाबा पत्रों के उत्तर भी देता था उसको। बहुत अच्छा लाल अक्षरों से लिखे हुए बाबा के पत्र होते थे सिंधी में, और बीच बीच में जो जगह थी उसमें हिंदी में ईशु दादी जी उसका ट्रांसलेशन करके लिखा करते थे। बहुत अच्छा बाबा का पत्र आता था, आगे आने वाली घटनाओं का आभास भी बाबा दे देता था और क्या अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है वो भी दे देता था। तो इस तरीके से ये दूसरी बात, बाबा ने जितने भी पत्र के उत्तर बाकी थे वो बाबा ने लिख करके दिए। नंबर 3, बाबा का एक काम बाकी था, नक्की लेक पे जो म्यूजियम है वो म्यूजियम का बिल्डिंग लेनी बाकी थी। वो टल रहे थे, तब तक हमारे पास उतने साधन नहीं थे, लेकिन बाबा ने 17 जनवरी को ही उस फाइल पे साइन करके, अच्छा उस बिल्डिंग को ले लो और वहाँ पर सेवा का साधन बना दो। तब म्यूजियम नाम तो कोई जानता नहीं था। और चौथा, बाबा ने 18 जनवरी की सुबह मुरली नहीं चलाई थी। थोड़ा बाबा के तबीयत, ठंडी के मौसम था, थोड़ा खांसी भी थी, तो बाबा ने नहीं, तो बाबा ने उस दिन रात्रि क्लास का अनाउंस करा कि आज बाबा जल्दी, रोज 9 बजे क्लास होती थी, आज बाबा जल्दी 7:30 बजे ही जैसे क्लास कराएगा, और सब भोजन करके आए, तो इसीलिए सब लोग भोजन करके आ गए और बाबा ने रात्रि क्लास कराई। बहुत फोर्सफुल क्लास, वो तो आपने सुनी होगी, अभी भी 18 जनवरी की क्लास पूरा टेप के अंदर और उसमें मिलती है, तो वो आप लोग बार बार सुनना चाहिए। अंतिम दिन बाबा ने हम बच्चों से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखी और वो मैंने कहाँ तक पूरी की, और मुरली की क्लास चला के बस बाबा उठ के ऐसे ही हिस्ट्री हॉल तो देखा ही है आपने, हिस्ट्री हॉल में बाबा बस ऐसे ही मुंह बच्चों की तरफ रहता था, लेकिन कदम एक एक पीछे की तरफ चला। बाबा ऐसा क्यों चल रहे हैं उल्टा? कई बार बच्चे पूछते थे कि बच्चों को मैं पीठ कैसे दिखाऊं, मैं तो शिव बाबा सिंगलता जारी भी नहीं बनता, पवित्रता स्वरूप हूँ, और ब्रह्मा बाबा अब ये इस समय आप बच्चों को, आप बच्चे डबल ताजधारी हो, तो इसीलिए डबल ताजधारियों को मैं पीठ नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं इधर जा रहा हूँ। देखो ब्रह्मा बाबा कितनी हाई रिस्पेक्ट हम बच्चों की रखता था उसमें। बस बाबा लास्ट में गए और लास्ट में बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। पहले कभी नहीं बोला बाबा ने, लेकिन उस दिन बोला और हम लोगों ने सोचा छुट्टी लेता है, यानी बाबा गुड नाइट जैसे करता था तो रात्रि की छुट्टी ले रहा है, लेकिन बाबा के तो मन में था ही आज बच्चों से मेरा अंतिम मिलन है। और बाबा गए और दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए, सारी शक्तियों की विल दादी जी को करते हुए बाबा ने छुट्टी ली। तो तब तक बाबा ने जैसे आत्मा को तो पवित्र बना ही लिया था और उसका वो प्रूफ क्या था कि उस दिन बाबा को एक बार भी न खांसी आई, न कफ साफ करने की जरूरत पड़ी, कोई भी नहीं, बिल्कुल इतना फ्लो में बाबा की मुरली चली। और उसके बाद बाबा गए और शरीर से विदा ली। लेकिन ब्यूटी ये थी, ये तो आत्मा को इतना पवित्र बना लिया कि मन के हाल सबके जान लिया बाबा ने दो दिन, लेकिन अंतिम मुरली की 18 जनवरी को शरीर छोड़ा बाबा ने, 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात और 21 को दीदी मनमोहनी जी टूर पर गए हुए थे, वो आए, उन्होंने विदा मतलब जब आए तब संस्कार किया गया, लेकिन बाबा का शरीर न काला पड़ा न कोई दुर्गंध आई, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था। बाबा ने अपने इन तत्वों को भी इतना पावन बना लिया था। हमें भी आत्मा को तो पावन बनाना ही है, लेकिन शरीर के इन तत्वों को भी पावन बनाना है, और इसीलिए शरीर के तत्वों को भी पावन बनाने के लिए प्रतिदिन हम 5 मिनट कम से कम 5-10 मिनट इन 5 तत्वों को भी दान दें, योगदान करें, इन्हें पवित्र बनाएं, और बाबा की तरह हम सब लोग भी शरीर आत्मा और शरीर के ये तत्व ये सब को पावन बना के चलेंगे, परम धाम चलेंगे, और फिर परम धाम से तो बाद में जाएंगे, पहले तो बाबा के साथ साथ जाएंगे। परम धाम पवित्र होके सबको इकट्ठे ही जाना है, बाबा कहता है ना बरात सबको, और उसके बाद फिर सतयुग में बाद में स्वर्ग में हम सब लोग इकट्ठे आएंगे। तो ये प्रीत की रीत है, जो कुछ अंश मैंने सुना है, ऐसे तो बहुत बातें हैं, लेकिन बाबा की तरह हम भी उस रीति से प्रीत की रीत निभाएंगे तो हम सब भी संपूर्ण बन जाए। ओम शांति, ओम शांति।
Yeah.
क्या था।